अब आप रजनीश कुमार यादव भी ये भाग तीन कला संकाय के आवाज में छायावाद की भूमिका में आठवां शीर्षक रूप विन्यास की रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। भावावेग में उत्पन्न अंतर्दृष्टि दायिनी और सृष्टि विधायिनी कल्पना ने कविता के रूप विन्यास में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया कि बड़े बड़े सुधी समालोचकों को भी छायावाद केवल नई काव्य शैली प्रतीत हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। निसंदेह द्विवेदी युग की तुलना में छायावादी कविता का रूप विन्यास इतना भिन्न और भव्य था कि अधिकांश पाठकों की आंखें चौधियां उठी। उस रूप की कांति से आतंकित होकर वे उसी को सब कुछ समझने लगे। उस हुस्न का इतना रूप था कि देखने वाले उसके भीतर की और कोई चीज देख ही नहीं सके। उस रूप विन्यास के पीछे काम करने वाली रुचि और सौंदर्य भावना उनसे अनदेखी ही रह गई। मुग्ध दर्शक के केवल रूप ही देखते रह गए। छायावादी कवि ने भी बड़े गर्व के साथ इस रूप दृष्टि को उपस्थित किया था और अपने मित्र को चुनौती देते हुए कहा था, लखो दिया यह पहना, किसने यह हार बना, भारती उर में अपना देख दृग थके। और सचमुच ही मित्र के दृग उसे देख थके। उसने उस हार का सौंदर्य तो देखा परंतु उसकी समझ में नहीं आ सका कि यह हार आया कहाँ से। कवि ने तो अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया था कि यह हार किसी बाजार से नहीं खरीदा गया है, यह हार उन मोतियों से बना है जो हृदय की सुक्तियों से पैदा हुए और फिर हृदय की सुक्ति ने भी वह मोती अपने आप नहीं पैदा किया। कल्पना के आकाश से भावों की जो वर्षा हुई उसी के कणों को हृदय में धारण करके कवि ने ये मोती उपजाए थे। परंतु वर्षा का वह जल भी शुद्ध आकाश की उपज न था, वह जल भी मूलतः धरती का ही था, वे बादल भी पृथ्वी के हृदय समुद्र से ही उठे थे। उस कल्पना की भी उत्पत्ति समाज से हुई थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के फलस्वरूप जो भयंकर सामाजिक तूफान उठा था उसी के द्वारा समुद्र से वे वारी कण उड़े थे। उड़े हुए थे जो कण उत्तरे पाशुभ वर्षण सुक्ति के हृदय से बन मुक्ता झलके। इस तरह छायावादी काव्य सौंदर्य की उत्पत्ति के विषय में छायावाद की ओर से बोलते हुए निराला ने स्पष्ट कर दिया कि इसकी उत्पत्ति कवि के उस हृदय से हुई है जो सामाजिक आंदोलन से उत्सित भावावेग और कल्पना को धारण करने वाला है। दूसरे शब्दों में उसका आधार भावात्मक और सामाजिक है। निराला की इस युक्ति को तुलसी के अनुलिखित रूपक के साथ मिलाकर देखिए तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहिए सुजाना, ज्यों बरखई बर बार विचारु, होइहि कवित्त मुक्ता मन चारु, जुगति वेधि पुनि पहि अहि, रामचरित वर ताग पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। तात्पर्य यह है कि रूप विन्यास आंतरिक सौंदर्य भावना का परिणाम होता है। छायावाद के पूर्ववर्ती द्विवेदी युग की कविताओं में जो अत्यंत सादगी और अनलंकृत दिखाई पड़ती है उसे शुद्धतावादी भावना का परिणाम समझना चाहिए। द्विवेदी युग की कविता का रूप विन्यास आर्य समाजी सौंदर्य भावना से ओतप्रोत था, इसलिए वह कविता आर्य समाज के उपदेशकों की तरह अपने वेश विन्यास में एकदम सादी थी। उसमें राग रंग की वस्तुओं का सर्वथा बहिष्कार था। अपने को सजाकर मोहक बनाने की जगह केवल जरूरत की चीजों से ही काम लेने की प्रवृत्ति थी। उपमाएं बहुत कम और भरसक पूर्व परिचित ही रखी गईं। तथ्य के सीधे कथन का आग्रह अधिक था, जैसे प्रकृति चित्रण करना हुआ तो कहीं लौकियां लटक रही हैं, काशी फल कुष्मांड कहीं हैं। यदि किसी मार्मिक तथ्य का उल्लेख करना हो तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। न कहीं उपमान न रूपक, व्यर्थ का बत बढ़ाव नहीं, जो बात है ज्यों की त्यों रख दी गई। आवश्यकता से अधिक एक भी शब्द नहीं, सुंदर बनाने की परवाह नहीं, जैसे रुचि वैसा रूप, तापस भाव तापस रूप। लेकिन छायावादी कवि के हृदय में प्रेम और श्रृंगार की भावना हिलोरे ले रही थी। यदि कवि के हृदय में साज सज्जा के लिए बाल सुलभ उमंग थी, तो किसी के मन यौवन में सुलभ श्रृंगार की तरंग और किसी में अल्हड़ मस्ती की बाकी अदा। यह रुचि कोरी आवश्यकता से कहीं आगे की सोचती थी। उपयोगिता की संकुचित सीमा से निकलकर वह कला के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाला कलाकार था। सादगी उसका आदर्श नहीं और न कट्टर शुद्धिवादी रूप विन्यास में। उसका आत्मविश्वास जहाँ एक उपमा से काम चल सकता है, वहाँ 10 उपमाएं उड़ेल दी और वे भी एक से एक अनूठी। सीधी बात भी एक प्रकार की विलक्षण सी भंगिमा में खड़ी है, भाव की तरंगे रूप में हिलोरे ले रही हैं। रूप की रेखाएं बारीक भाव को संजोए हुए हैं। सजावट कुछ ज्यादा हो गई तो क्या, रंग अधिक चटक हो गया तो हो, लेकिन कृत्रिमता का आरोप करते हैं तो करें। स्वयं प्रसाधन के ये साधन भी यदि कलरों को लाहौल करके कविता का उपहास करते हैं तो करते रहें, कवि इसके कहीं भी कुंठित नहीं है, क्योंकि वह प्रिय के पथ पर चल रहा है। प्रिय पथ पर चलती सब कहते सिंगार, मौन रही हार। सेब की तरह रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण यदि बाहर झलक पड़े तो कोई क्या करे। छायावादी कवि के हृदय में सौंदर्य का जो अपार सागर लहरा रहा है, वह यदि कविता के रूप विन्यास को भी उमड़कर रंजित कर गया तो क्या आश्चर्य। परंतु यह अलंकार प्रियता, यह रूप सज्जा रीतिवादी कविता से काफी भिन्न है। रीतिकाल और छायावाद की कविता के रूप में विन्यास में वही अंतर है जो दोनों युगों की नारियों अथवा पुरुषों के रूप विन्यास में अंतर है। रीतिकाल की कविता मध्ययुगीन राजा और रानी की तरह अनेक प्रकार के आपेध्य, निबंधनीय, प्रक्षेप्य और आरोप्य अलंकारों का पुंज मालूम होती हैं। रीतिकालीन कविता की इस अलंकृति पर आधुनिक रुचि के लोगों ने काफी नाक भौं सिकोड़ी है। स्वयं छायावादी कवियों ने भी उसकी कम आलोचना नहीं की। पल्लव की भूमिका में इसका मजाक उड़ाते हुए पंत कहते हैं, स्वस्थवाणी में जो एक सौंदर्य मिलता है उसका कहीं पता नहीं, उस सुधे पायन धर सके शोभा ही के भार वाली ब्रज की वासक सज्जा का सुकुमार शरीर अलंकारों के अस्वाभाविक बोझ से ऐसा दबा दिया गया, उसके कोमल अंगों में कलम की नोक से असंस्कृत रुचि की स्याही का ऐसा गोदना भर दिया गया कि उसका प्राकृतिक रूप रंग कहीं दिख ही नहीं पड़ता। परंतु रीतिकाल की अलंकृति का यह दोष नहीं था कि उसमें अनावश्यक बहुलता थी। जहां तक साज सज्जा की अतिशयता का सवाल है, छायावाद रीतिवादी कविता से किसी बात में कम नहीं। स्वयं पंत ने ही आधुनिक कवि पुस्तक माला में संकलित अपनी रचनाओं का पर्यालोचन करते हुए स्वीकार किया है कि छायावाद काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया और उसमें केवल टेक्निक और आवरण मात्र रह गया। इसीलिए रीतिकाल और छायावाद की कविता के रूप विन्यास का अंतर अलंकारों की बहुलता और न्यूनता का नहीं, बल्कि उन अलंकारों के पीछे काम करने वाली रुचि अथवा सौंदर्य का भावना है। एक के पीछे मध्ययुगीन रुचि है तो दूसरे के पीछे आधुनिक रुचि। ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप आधुनिक युग ने मध्ययुग के अधिकांश अलंकारों और वेश विन्यास के ढंग छोड़ दिए। यह केवल यूरोपीय प्रभाव ही नहीं, भारत में आधुनिक सौंदर्य बोध के विकास में निस्संदेह एक हद तक यूरोपीय सौंदर्य बोध का काफी योग है। परंतु यह भी निश्चित है कि यूरोपीय प्रभाव के बावजूद भारत में स्वतंत्र रूप से आधुनिक सौंदर्य भावना का विकास हुआ। छायावादी कविता का रूप विन्यास इसी आधुनिक सौंदर्य भावना पर आधारित है। इस सौंदर्य भावना की पहली विशेषता यह है, स्वाभाविक सौंदर्य की अधिक से अधिक रक्षा तथा उसकी सहजता का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त प्रसाधन का आरोप। रीतिकाल तक आते आते इस सहज प्रसाधन का अभाव हो गया था। जिस सामंती सौंदर्य भावना का अभ्युदय कालिदास की रचनाओं में दिखाई पड़ता है, वह सामंती व्यवस्था के रास के साथ धीरे धीरे परिपाटी विहित हो गई। कालिदास की नायिकाएं धातु निर्मित अलंकारों से अधिक अशोक, कुर्बक, कदंब, शीरीष, कमल आदि कुसुमों से अपना श्रृंगार करती थी। उनकी अलका की वधुओं का यह चित्र है, जिसके हाथ में लीला कमल है, अलक में कुंद के ताजे फूल गुथे हुए हैं, मुख पर लोध के फूल की पांडुर रजमली है, चूड़ा पाश में नव कर कुर्बक हैं, कानों में सुंदर शीरीष है तथा मांग के अग्रभाग में कदम सुशोभित हैं। लेकिन धीरे धीरे जीवन का दायरा संकुचित होता गया, प्रकृति से संबंध टूटता गया, नारी की स्वतंत्रता कम होने लगी। वह दिन पर दिन दीवारों से घिरती गईं, उसके प्रसाधन की सामग्रियां बदल चलीं। उन सामग्रियों में से कुछ तो केवल परंपरा पालन के लिए थीं और शेष भोग विलास मूलक। अलंकृत में फूलों का स्थान धातुओं ने ले लिया। स्वतंत्रता छीनते ही श्रृंगार प्रसाधन की दिशा में नए नए प्रयोग का उत्साह नारी से लुप्त हो गया। उसकी सौंदर्य भावना का संकुचित और रूढ़िग्रस्त हो गई। सामंती व्यवस्था के अंतिम दिनों के समाज और साहित्य में इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। राजपूत शैली के चित्र इसके साक्षी हैं। काव्यात्मक अलंकार भी इस प्रभाव के सूचक हैं। रीतिकालीन कविता के अलंकारों में नवोन्मेष कम, रूढ़िपालन अधिक है। रूढ़ निर्वाह का संबंध तो हृदय से होता नहीं, इसलिए रीतिकालीन कविता के अलंकार एकदम ऊपर से आरोपित प्रतीत होती हैं। इस तरह अलंकारों के जबरदस्ती आरोप से भावधारा दबी हुई जान पड़ती है, इसलिए वे भार